साथियों नमस्कार, आप सुन रहे मोबाइल वाणी। मोबाइल वाणी के लिए मैं दिनकर पातुकर। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे साथ आज विशेष रूप से आमंत्रित है वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजवादी चिंतक आदरणीय रघु ठाकुर जी। नमस्कार ठाकुर साहब
जी। नमस्कार जी।
ठाकुर साहब, जैसा कि संपूर्ण विश्व में भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इस तरह से इस देश की पहचान पूरे विश्व में है, और आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम आपसे जानना चाहते कि गणतंत्र में हमारे देश का लोकतंत्र कितना मजबूत है, इस संबंध में आपकी राय जानना चाहते।
देखिए, गणतंत्र दिवस हम लोग जो मनाते हैं वो इसलिए मनाते हैं कि 26 तारीख को ही देश के संविधान के लिए लागू किया गया था, तो इसका भारतीय संविधान के साथ भी रिश्ता है। दूसरा, जो गणतंत्र दिवस है इसका जो अर्थ है कि हिंदुस्तान का जो संविधान है वो किस प्रकार का लोकतंत्र चाहता है। दुनिया में लोकतंत्र के कई प्रकार के प्रयोग हो रहे हैं, चल रहे हैं। जैसे अमेरिका में है, वहां पर लोकतंत्र में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो वहाँ राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, उसके हाथ में सारी सत्ता होती है। हम लोग यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ संसद चुनी जाती है और संसद के बहुमत से या विधानसभा के बहुमत से फिर सरकार बनाई जाती है। और लोकतंत्र के तीसरे प्रयोग कुछ और भी राज्यों में या देशों में हो रहे हैं जो थोड़े से इससे भिन्न हटकर के प्रयोग हो रहे हैं। ये वहाँ पर गणतंत्र के जो कल्पना है वो कल्पना एक प्रकार के अर्ध तानाशाही सी कल्पना हो गई। तो हमारे जो मुल्क में गणतंत्र की कल्पना है, उस कल्पना को समझने के लिए हमको इसका जो अर्थ है उसको समझना होगा। हमारे संविधान में लिखा है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अब रिपब्लिक ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया का मतलब और गणतंत्र का मतलब ये है कि हमारा जो देश है, हमारे देश में राज्यों का भी एक समूह है। तो देश जो हमारा जो संविधान का ढांचा है ये एकात्मक नहीं है, ये यूनिटरी नहीं है, ये गणतंत्र है। जिस गणतंत्र में राज्यों को भी अधिकार दिया गया है और राज्यों के लिए भी एक प्रकार की सीमित अर्थ में स्वायत्तता जो उनको दी गई है कि उन क्षेत्रों में राज्य काम कर सकते हैं। और इसीलिए भारतीय संविधान ने जो अधिकार है उनको तीन हिस्सों में बांटा है। एक है जो केंद्र की सूची है, एक राज्य की सूची है, एक समवर्ती सूची है। जो केंद्र के अधिकार हैं, केंद्र के होते हैं, उनमें केवल संसद कानून बना सकती है। राज्य वाले जो होते हैं उनमें राज्य बना सकता है। और जो समवर्ती सूची है उसमें दोनों को अधिकार होता है, केंद्र को भी और राज्य को भी। और अगर मान लीजिए कि एक ही विषय पर कानून बनता है तो फिर केंद्र का जो कानून है वो प्रिवेल करता है, वो महत्वपूर्ण माना जाए, प्रभावी माना जाता है। अब ये जो परिस्थितियां हैं गणतंत्र की या जो कल्पना है गणतंत्र की, हम देख रहे हैं तोलना चाहेंगे कि क्या ये गणतंत्र की परिस्थितियां आज है। आज स्थिति ये हो गई है कि जो हमारे यहाँ राज्य हैं, सूबे हैं, जिनके पास में एक प्रकार की स्वायत्तता के कुछ अधिकार होते थे, अभी जो नया ढांचा बनाया जा रहा है इसमें सारा का सारा एक प्रकार का जो केंद्रीकृत ढांचा हो रहा है। और हम लोग अलिखित तौर पर रिपब्लिक जो है वो रिपब्लिक से हट करके यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में जा रहे हैं, यानी सारा काम दिल्ली की सरकार कर रही है। और दिल्ली की सरकार धीरे धीरे सारे अधिकारों को अपने अधीन में ले रही है। तो राज्यों को दिल्ली की सरकार या तो आर्थिक क्षमता के आधार पर, पैसे देने के आधार पर, या फिर उनके चयन के आधार पर, उनके वोट के आधार पर अपने अधीन लेने का काम कर रही है। ये एक बड़ी चिंता की स्थिति है। जहां पर केंद्र की सरकार और सूबा की सरकार एक ही राय की है, वहां एक प्रकार की अलिखित पिछलग्गूपन है। अगर मान लीजिए कि आज दिल्ली में एक पार्टी की सरकार है, उसी पार्टी की सरकार ही सूबे में है, दो प्रकार के परिणाम उसके निकल रहे हैं। एक परिणाम तो निकल रहा है कि जो केंद्र है वो अपनी सरकार के लिए ज्यादा सुविधाएं देता है, ज्यादा पैसे देता है। मतलब उदाहरणों के लिए कह रहा हूं, अब कर्ज है, अब मान लीजिए कर्ज आज राज्यों के पास कर्ज है और ज्यादा कर्ज है, राज्यों ने ज्यादा कर्ज ले लिए, पर अब केंद्र क्या करता है? अगर आप उनकी अनुकूल सरकार है तो उनके जो कर्ज है राज्यों के उनको चुकाने के लिए समय सीमा बढ़ा देगा, उनके लिए किसी अन्य प्रकार से फंड्स कर देगा, उन्हें मदद पहुंचा देगा, उन्हें के लिए कोई नए पैसे की योजना मंजूर कर देगा, तो उन्हें मदद दी जाएगी। एक और दूसरा दूसरा जो प्रभाव पड़ता है कि उनके जो अनुकूल राज्य है या उनके पार्टी के ही राज्य होते हैं उन राज्यों के लिए एक प्रकार का लाचारी होती है या उनके लिए एक प्रकार का नेतृत्व की लाचारी होती है कि वो उनकी सरकार केंद्र की क्या करे उसके अनुकूल काम करे। तो जो एक लोकतांत्रिक स्वायत्तता है वो अपने आप भी कम हो जाती है, क्योंकि जब ऊपर बड़ा अधिकारी बन के हो या अधिकारी जैसा तंत्र बन जाता है तो फिर एक चुनाव वाली प्रक्रिया हट जाती है। इसी प्रकार से दूसरा जो फर्क आता है कि जहां पर केंद्र में अलग सरकार है और राज्य में अलग सरकार है, उन सरकारों में जो अंतर है कि जो केंद्र की सरकार जो है उन सरकारों के लिए मदद नहीं पहुंचाती है, उनके लिए सहयोग कम करती है, उनको बाधा पैदा करती है, उनके लिए कर्ज के नाम पर, उनके वसूली के नाम पर, उनके लिए टैक्स के नाम पर और चीज पर वो करती है। और दूसरा ये होता है कि जो सूबा की विरुद्ध की सरकारें होती हैं वो सरकारें भी फिर केंद्र की सरकार से तालमेल नहीं बिठाती है, बल्कि झगड़ा करने में लगी रहती हैं कि हमें अपना आधार बनाना है, हमें अपना आधार बनाना है। तो ये जो एक परिस्थितियां हैं इससे हमारा जो लोकतंत्र है ये लोकतंत्र एक प्रकार के आंतरिक तनावों में फंस जाता है। और पिछले कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूँ, खासकर पिछले 25-30 वर्षों से, 3 दशक से और कहना चाहिए 4 दशक से, कि लोकतंत्र में ये केंद्र और राज्य के जो सूबाई तनाव है ये बहुत ज्यादा सामने आने लगे हैं और ये इनके तनाव बहुत सी होते बढ़ रहे हैं। हालत ये है कि केंद्र कोई अगर अच्छी भी योजना लागू करना चाहता है तो राज्य उसको लागू नहीं करता है, क्योंकि उसको लगता है कि इसका लाभ केंद्र वालों को ना मिल पाए। और अगर कोई राज्य अच्छी सी योजना लागू करना चाहता है तो केंद्र उसको सहयोग नहीं करता है कि भाई ऐसा ना हो इसका लाभ इसके लिए मिल जाए। तो कुल मिलाकर राज्य के लाभ पाने के चक्कर में इसके कारण से ये जो अच्छी योजनाएं या अच्छे काम होने से वो नहीं हो पाते हैं, ये अंतिम तनाव फंस जाते हैं। दूसरा जो भारतीय राजनीति हो गई है, भारतीय राजनीति भी हमारी एक प्रकार से एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है कि जहां पर दलों में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। जब तो दलों में आंतरिक लोकतंत्र नहीं होता है तो जो दलों के माथा लोग हैं, सूबे के नीचे वाले लोग हैं, वो माथा जैसे बन जाते हैं। अब आप देखिए कि सरकारों की आजादी कैसे रहेगी। अभी जो चुनाव होते हैं उन चुनाव के बाद में सभी पार्टियों की हालतें हुई है कि वो कहते हैं कि हमारी केंद्र की आला कमान जो है नामित करेगा। कोई परीक्षक आता है, वो रिपोर्ट लोगों की ले लेता है, बताने के बता देता है और इनको बता के साहब ये मैंडेट है इसके लिए करना है। और ये स्थिति अब धीरे धीरे बढ़ गई, फैल गई। पहले स्थिति केवल एक कांग्रेस पार्टी होती थी, केंद्र से नियुक्त करते थे, अब तो वो कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, अकाली दल हो, आपके आम आदमी पार्टी हो और कोई भी पार्टी हो, अगर उन पार्टियों के प्रति जो सत्ता है उसका काम तय करने का जो है वो आला कमान करने लगा है, तो ये एक प्रकार से लोकतंत्र में सिकुड़न है, लोकतंत्र में कमी है। जो विधायक लोग हैं या सांसद लोग चुन के जाते हैं, क्या वो अपने नेता नहीं चुन सकते? परंतु उनके उनका जो मत है उस मत को पहले से ले अपने पास लिया जाता है कि नहीं तुम चुन के भले आ जाओगे पर वोट तुम्हें हमको देना है। अब जरा बताइए कि जिस देश में एक विधायक का और सांसद का वोट भी गिरवी रखा लिया जाए टिकट के बदले में, चुनाव के बदले में, तो वहां पे लोकतंत्र क्या होगा? और जिस मतदाता के लिए हम लोग कह रहे हैं कि साहब मतदाता को निष्पक्ष होना चाहिए कि मतदाता निष्पक्षता से वोट करे, जब मतदाता का चुनाव का नुमाइंदा का ही मत अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उसे तो उसको वोट देने पे बताना है, देना भी नहीं है, वोट तो का तो चेक कर देगा केंद्र वाला, उसे खाली हाँ करना है कि जी हुजूर हम भी इसी के राय के हैं, तो लोकतंत्र कहाँ रहेगा? तो जो हम लोग यहाँ गणतंत्र का जो कल्पना थी, जो हमारे संविधान ने जो कल्पना की थी 26 नवंबर को, 26 जनवरी के दिन में, उस कल्पना के आधार पर हमारा लोकतंत्र नहीं है। अभी हमारा लोकतंत्र इससे बहुत पीछे जा रहा है। तो एक तो स्थिति है, दूसरा क्या है कि जो भारतीय संविधान हमारा है, इस संविधान ने जो नागरिक अधिकार दिए हैं वो अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ 3 प्रकार के अध्यायों की मैं चर्चा करूंगा अन्य चीजों को छोड़कर। एक तो चर्चा हमने आपसे की है कि पहले भी की है कि राज्य के कानून के बनाने के अधिकार अलग है, केंद्र के अलग है, संबंधित सूची अलग है। और ये भी प्रावधान किया गया है कि अगर किसी कानून को लेकर के कोई बहस है, मतभेद है, या राज्यों के और केंद्र के अधिकारों को लेकर कोई बहस मतभेद है, तो उसका अंतिम फैसला का जो अधिकार है, संविधान की व्याख्या का जो अधिकार है, वो हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय का एक विशिष्ट स्थान है। पर मैं दूसरी बात पर इस पर आ रहा था कि जो संविधान की ने जो 3 प्रकार के और भी हमारे खंड तय किए हैं, उनमें एक खंड है, वो है हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स का, मूल अधिकारों का। दूसरा है फंडामेंटल ड्यूटीज का, ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन का, यानी हमारे संविधान में, संविधान ने ये भी कहा है कि हमारे अधिकार क्या है, एक नागरिक के नाते अधिकार क्या है, मैं क्या सरकार को कौन कौन से अधिकार हमारे अपने अधिकार हैं जिनको सरकार हनन नहीं कर सकती, या कोई भी व्यवस्था हनन नहीं कर सकती, ना कोई व्यक्ति हनन कर सकता है। अगर उनको कोई हनन करता है तो हम उनके खिलाफ न्यायपालिका में जाके न्याय की मांग कर सकते हैं। दूसरे खंड में वो दायित्व है कि जो दायित्व भी एक नागरिक के है कि हमें भी क्या करना है, यानी संविधान के अनुकूल हमें को किस प्रकार कदम उठाना है, ये दायित्व भी हमारा संविधान तय करता है। और तीसरा, ये भी संविधान ने एक वर्णन किया हुआ है कि कुछ ऐसे भी काम हैं जो काम हमारे अधिकार के रूप में तो हैं, पर जिन्हें सरकार को उस समय की परिस्थितियों में अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है, तो वो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, उनको लेकर के यदि एक नया प्रकार नजरिया आया है कि आखिर ये भी देश के सर्वसम्मत सिद्धांत से इनको भी अमल में लाना चाहिए, करना चाहिए। ये तीन प्रकार के खंड हमारे अधिकारों के और दायित्व के हैं। अब हम देखें कि क्या ये अधिकार हमारे सुरक्षित हैं। हमारा सबसे जो बड़ा फंडामेंटल राइट है या मूल अधिकार है, वो है अभिव्यक्ति का अधिकार। आज अभिव्यक्ति का अधिकार बहुत ही प्रकार से सिकुड़ गया है और सरकारें निरंकुश हो रही है। अभी स्थिति है कि बोलने का जो अधिकार है वो अधिकार केवल सत्ता पक्ष के पास में है, प्रिंसिपल के पास में बोलने का अधिकार भी नहीं है। हमें संगठन बनाने का, हमें सभा करने का अधिकार है, पर अधिकार नहीं है। इसके लिए अधिकार नहीं है कि प्रतिबंध के नाम पर इतने प्रतिबंध लगा दिए गए हैं कि आपको किसी सभा को करने के लिए, उसको अनुमति लेने के लिए ही एक बहुत बड़ा संकर काम करना पड़ता है। अभी दिल्ली में जंतर मंतर पे आप जाएंगे तो जंतर मंतर पे अभी जांच करने की मशीनें लगाई गई हैं, और जो भी व्यक्ति धरना करने के लिए जाएगा उसको एक तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के नाम पर एक 20-25 पेज का प्रोफॉर्म भरना पड़ता है, उसे बताना पड़ता है कि हमारी संख्या कितनी रहेगी, संख्या में कहाँ से लोग आएंगे, उनके पते ठिकाने क्या होंगे, उनके पानी की व्यवस्था हम करेंगे, उनके खाने की व्यवस्था हम करेंगे, और फिर वो भी जो लोग सीमित लोग आएंगे वो भी उस मशीन में से निकल के जाएंगे, यानी एक एक करके गुजर के जाएंगे। तो ये आज हालत बन गई है, ये लोकतंत्र कहाँ है? अगर हमको अपनी बात को कहने की आज़ादी नहीं है, हमें सत्याग्रह की या सिविल लापरवाही की आज़ादी नहीं है, हमें सरकार के खिलाफ बोली की आज़ादी नहीं है, तो फिर ये लोकतंत्र हमारा लोकतंत्र नहीं है। ये तो एक प्रकार से लोकतंत्र के नाम पर छिपा हुआ तानाशाही तंत्र बन गया है। तो आज देश में लोकतंत्र नहीं है। जो लोग विरोध में बोलने का काम कुछ करते हैं उनके लिए सरकार की तरफ से प्रतिशोध की कार्रवाई की जा रही है। आजकल ईडी की बड़ी चर्चा है, और ईडी किसी भी राजनेता के यहाँ जा रही है और जाके उनके यहाँ पहुंच जाती है, उनको गिरफ्तार कभी करती है, कभी नोटिस देती है, वगैरह वगैरह काम करते हैं। ईडी की कार्रवाई हो जिस पर कोई आपत्ति नहीं है, ईडी के लिए का एक अपना संस्था का अपना काम होना चाहिए, परंतु ये क्या वजह है कि ईडी क्या छापा या ईडी का जाना वही होता है जो केंद्र सरकार के विरोधी जमातें हैं या पार्टियां हैं या सरकारें हैं, उनके यहाँ जाना होता है। क्या पिछले 10 सालों में किसी भी एक भारतीय जनता पार्टी की जिसकी केंद्र में सरकार है उसके नेता के यहाँ जांच करने के लिए ईडी गई है या ईडी पहुंचाई गई है? बल्कि उल्टा हो रहा है कि जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है वो तो अगर उसके पास ईडी का नोटिस पहुंचा हुआ है तो नोटिस भी वापस जाता है। कितने प्रकरण हम लोग इस प्रकार देखे हैं, आपके महाराष्ट्र का अजीत पवार का प्रकरण हम लोग देख रहे हैं। अजीत पवार के खिलाफ में एक जमाने में 1,00,000 करोड़ के घोटाले का आरोप था, वो भाजपा सरकार में चले गए, यानी कि सहमत हो गए, मंत्री पद की शपथ हो गई, तो घोटाला का आरोप सीबीआई का आरोप वापस हो गया, फिर बाद में वो नहीं गए तो फिर से आरोप चालू हो गया। तो सीधा सीधा आज जो केंद्र की गुप्तचर संस्थाएं या जांच संस्थाएं हैं जो फाइनेंशियल डिरेक्टरी की जांच करती हैं या अन्य प्रकार की जांच करती हैं, तो उन सारी जांच करने वाली जो संस्थाएं हैं इन संस्थाओं के लिए केंद्र की सत्ता जो है अपने ढंग से इस्तेमाल कर रही है और अपने विरोधियों को दबा करके एक प्रकार से भारतीय लोकतंत्र को एक दलीय लोकतंत्र में बदलने की तैयारी कर रही है। ये खतरनाक स्थिति है। तो हम आज़ादी के बाद हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं। हमने 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान को लागू किया था तो हमने लोकतंत्र की व्यवस्था को अंगीकार किया था, परंतु हम धीरे धीरे एक अलिखित तानाशाही की व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं जहां पर केंद्र के पास सर्वसत्ता हो जाएगी, व्यक्ति सबसे कमजोर हो जाएगा। लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें सरकार कमजोर हो, आंतरिक मामलों को लेकर मैं कह रहा हूँ, बाह्य मामलों को लेकर सरकार मजबूत हो या देश मजबूत हो अलग बात है, बाह्य मामलों को लेकर अगर मजबूती होती है तो मजबूती सरकार की नहीं होती है, वो तो देश की मजबूती होती है, पर आंतरिक मामलों में सरकार कमजोर हो और एक व्यक्ति मजबूत हो, परंतु व्यक्ति को कमजोर किया जा रहा है और सरकार दिनोंदिन सिकुड़ के मजबूत बन रही है, लाठी गोली की ताकत, कानून की ताकत, दबाव की ताकत बढ़ रही है, तो लोकतंत्र खत्म हो रहा है, लोकतंत्र एक प्रकार से सिकुड़ने की ओर जा रहा है, और ये जो संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है ये बहुत चिंताजनक है। अभी स्थिति यह है कि एक प्रकार की चुप्पी देश में है, आंदोलन करने वाले लोग बोल नहीं पा रहे हैं। हम तो मानते हैं कि नहीं बोलना चाहिए, हिम्मत से बोलना चाहिए, हमें इसका कोई डर नहीं है, हमें ईडी का कोई डर नहीं है, हमारे ईडी के छापे को हमको डर नहीं है, हमने कोई बड़ा काम नहीं किया है, परंतु व्यक्ति को निर्भय बनाना ये एक लोकतांत्रिक प्रणाली में सरकार का दायित्व होता है। महात्मा गांधी ने देश को निर्भयता प्रदान की थी, देश को सबसे बड़ा मंत्र जो उन्होंने अहिंसा के सत्याग्रह के बंधन से दिया था, या सविनय फरमाने के बंधन दिया था, वो देश के व्यक्ति को निर्भय बनाने का था। डॉक्टर लोहिया ने हिंदुस्तान के आम आवाम के लिए लड़ने के बात को उठा करके, संघर्ष की बात को तैयार करके उसके लिए एक प्रकार से निर्भय बनाने का काम किया था। तो लोकतंत्र का पर्याय होता है निर्भयता और तानाशाही का पर्याय होता है भय। तो जब देश में भय व्याप्त कर दिया गया है तो फिर ये लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र के आवरण को ओढ़े हुए तानाशाही है, ये लोकतंत्र को आवरण को ओढ़े हुए ये एक प्रकार की केंद्रीकृत व्यवस्था की तानाशाही है। और इसलिए आज इस संवैधानिक दिवस के अवसर पर, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर, हमें इन सारे सवालों को सोचना चाहिए, इन बातों को सोचना चाहिए, क्या गणतंत्र में राज्य केंद्र के दास बने रहेंगे, केंद्र के सामने कटोरे लेके भीख मांगते रहेंगे, केंद्र की जीहूजूही करते रहेंगे, केंद्र की हामे हाँ करते रहेंगे, या राज्यों की अपनी क्षेत्रीय जो जरूरतें हैं, अपनी जो क्षेत्रीय पहचान है, वो पहचान को रखते हुए, अपनी जरूरतों को रखते हुए, वो कुछ क्षेत्रों में स्वायत्तता से काम कर सकेंगे, जिस स्वायत्तता का सीमा रेखा संविधान ने बांधी है, ये महत्वपूर्ण सवाल है जो प्रायः क्या हो सकता है।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका कि आपने मूल रूप से जनताओं की बात का और अधिकारों का संविधान सम्मत जो बातें रखी आपने, निश्चित ही आज वर्तमान समय में वो देश के नागरिकों के लिए अति महत्वपूर्ण है। मोबाइल वाणी आपका पुनः एक बार धन्यवाद करता है कि आपने मोबाइल वाणी के मंच से गणतंत्र दिवस के अवसर पर गणतंत्र के संबंध में आपने महत्वपूर्ण जो बातें की, निश्चित ही ये आम जनता के लिए लाभप्रद सिद्ध होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद
फतुगढ़ जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इसलिए कि आप बड़ा जोखिम उठा रहे हैं आज के दौर में, जब बोलने के ऊपर अघोषित पाबंदी है ना, एक ऐसी स्थिति है कि हमारे यहाँ बुंदेलखंड में कहावत है कि जबरा मारे रोन न दे, तो बच्चे के लिए जो ताकतवर आदमी जब मारता है तो बोलता रोना नहीं है, हम मारेंगे पर तो रो मत। आज मुल्क की हालत ऐसी ही है कि जबरा मारे रोन न दे, केंद्र मार रहा है, सत्ता मार रही है, राज्य की सूबाई सत्ताएं मार रही है, और समाज से कहा जा रहा है कि तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें बोलना नहीं है। ऐसी स्थिति में आप जो वाणी के लिए स्थान दे रहे हैं, बोले को स्थान दे रहे हैं, आप लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद सर।